very healthy. And he has very good health, qualified sons and daughters. He has everything for his life. Then what is the need of doing bhajan? Ek aadmi sab prakar se samidh hai, uski istri sundari hai, pati vrata hai, bachche log bade guni hain, mata pita ka bhi aadar karte hain aur bahut hi sundar swasth aur sundar sharir hai. Usko संसार में जो चीजें चाहिए, आज जो लोग जिसको चाहते हैं, कार भी है, अपना एरोप्लेन भी घूमने के लिए है, अपना बहुत बड़ा बगीचा भी है, सभी कुछ उनके लिए संभव है. तभी उस मनुष्य को क्यों भजन करना चाहिए? वाई दे डू भजन? आई रिक्वेस्ट ओरोकाम प्रभु टू स्पीक समथिंग अबाउट दिस. In brief,
Ajnanatvirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyayevacha patitanam pamanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Namo mahavadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gaurattise namah. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्ति.
सर्वप्रथम में अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान के केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटिशः दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात वैष्णवगण, सज्जन सुधी वृंद, माताएं बहनें और बेटियां, आज हम लोगों का पंचम दिवस और अंतिम दिवस है. आप लोग इस दुर्दिन में भी इतने लोग सुनने के लिए आते हैं, या इससे हम आपके आभारी हैं. मैं कथा आरंभ करने के पहले दो एक विषयों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, जो यहां के कुछ श्रोताओं के द्वारा पूछे गए हैं. पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आजकल जो इस्कॉन संस्था है, मैं इसकी ओर से प्रचार करने नहीं आया. आज के इस्कॉन से हमारा कोई भी संपर्क नहीं है और संबंध नहीं है. मैं अपने गुरु परंपरा गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के विचारधाराओं के अनुसार सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं. स्वामी जी भी उसी के भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जिसको कहते हैं आजकल लोग, वो उसी के प्रतिनिधि के रूप में इस देश में भी सर्वत्र आए थे, उन्होंने प्रचार किया था, उनसे हमारा मधुर संपर्क था। वो हमारे गुरु जी से संन्यास अवलंबन किया था, इसलिए हम लोग गुरु भाई भी हैं, और मैं उनको अपना शिक्षा गुरु समझता था। किंतु उनके परलोक गमन के पश्चात आधुनिक जो संस्था है कुछ विपथ में चलने लगी। हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से बहिर्मुख हो गई। बहुत से सीनियर और सिंसियर डिवोटी जो थे, जो प्रभुपाद जी के भी बहुत प्रिय थे, उन लोगों ने इस्कॉन छोड़ दिया, क्योंकि देखा शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं रहा। जो रहे बाकी भी, वो लोग अधिकांश 95% से अधिक भ्रष्ट होकर के नीचे चले गए। यहां पर जिनके मंदिरों में वैष्णवों का जाना, भक्तों का जाना निषिद्ध है, बतलाइए वो कैसे कोई धर्म स्थान हो सकता है। वहां पर भी मैं समझता हूं कि भगवान या गुरु नहीं रह सकते। इसलिए इन लोगों से हमारा संपर्क नहीं। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि वैसे ही वेश, वैसे ही तिलक, वैसे ही माला, इसलिए एक समान समझते हैं कि तो बात या गलतफहमी है। वो हमारे हमसे, बल्कि स्कून कहिए तो हम लोगों से पैदा हुआ। प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के शिष्य थे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने हमारे गुरु जी से संन्यास लिया मथुरा में, और इस देश में प्रचार करने के लिए आए। इसलिए उसका जन्म हमारे गौड़िया ये वैष्णव संप्रदाय से ही होता है। यदि उसके वसूलों को नहीं मानते हैं तो उससे उनका कोई भी संपर्क नहीं, हमारा भी संपर्क नहीं। हम उनका कल्याण चाहते हैं, वो हमारी विचारधारा में आए, वैष्णवों का सम्मान करना सीखें, समस्त प्राणी मात्र का सम्मान करना सीखें, तब वो वैष्णव हो सकते हैं, अन्यथा वैष्णव नहीं। दूसरी बात यह स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे एक प्रिय बंधु ने पूछा प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग ये क्या चीजें हैं, इसका पार्थक्य कहाँ है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानना चाहते हैं। इसलिए संक्षेप में दो शब्दों में इसका भी उत्तर देना उचित समझता हूं। प्रवृत्ति कहते हैं किसी कार्य में लगने को, लगन को कहते हैं प्रवृत्ति। जब कोई व्यक्ति इन आसक्ति के साथ इन सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होकर गृहस्थ धर्म या सांसारिक धर्म का अवलंबन करता है, तो उसे प्रवृत्ति मार्ग का चलने वाला कहा जाता है। अर्थात सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होने वाला, वो भी आसक्ति के साथ में यदि हो, तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है साधारण रूप। और जो सांसारिक धर्मों को संपूर्ण रूप से प्रत्याग कर परमार्थ का अनुशीलन करता है, उसे निवृत्त मार्ग कहते हैं। अब इसको थोड़े से और समझा रहा हूं विशेष रूप में, थोड़ा सा विशद रूप में। प्रवृत्ति मार्ग भी दो प्रकार के हैं, जिनका संपर्क परमार्थ से कुछ नहीं, संसारिक कार्यों में लिप्त हैं, संसार में विवाह शादी कर अर्थ उपार्जन और उसके द्वारा सुखी होने की चेष्टा में जो प्रवृत्त होते हैं, वो क्या वो गृह गृह में भी कहलाते हैं। एक गृह में भी, एक गृहस्थ। गृह में भी वो है जो विवाह शादी कर उसको बीच का खूंटा मानकर उसके चारों तरफ में घूमते हैं आसक्ति के साथ में, वो गृह में भी हैं। ये एक प्रवृत्ति मार्ग है। और दूसरा, जो इनको छोड़कर के संपूर्ण रूप से परमार्थ की चेष्टा करते हैं, वो निवृत्ति परायण है। अब उदाहरण के साथ में समझिए, महाराज हरिश्चंद्र जजाति महाराज, नाम सुना होगा जजाति महाराज, हरिश्चंद्र
और ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ये लोग प्रवृत्ति मार्गी हैं। सदाचार निष्ठा संपन्न है, परोपकार करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, दान देने वाले हैं, साधारण रूप में भगवान को भी कुछ मानते हैं, किंतु यहां पर धर्म आत्म धर्म कुछ नहीं। ये एक प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। और दूसरे होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, महाराज जनक, अम्बरीश, पांडव लोग, भरत महाराज, सुग्रीव जी, ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, जो संसार में स्थित रह करके भी भक्ति की प्रधानता कर देते हुए और गृह का संचालन करते हैं, ये भी प्रवृत्त मार्ग में है। अब निवृत्त मार्ग में चलिए, जो घर बार संसार को संपूर्ण रूप से छोड़ देते हैं वो निवृत्ति मार्गी तो हैं, ये भी दो भागों में विभक्त हैं। एक होते हैं जो संसार इत्यादि छोड़कर अष्टावक्र की भांति शंकराचार्य, उनके सन्यासी शिष्य इत्यादि जो हैं, जो अपने को ब्रह्म इत्यादि कहते हैं और मुक्ति जिनका लक्ष्य है, ये निवृत्ति परायण वाले एक हैं। ये सब मोक्ष को लक्ष्य करके ब्रह्म में मिल जाएंगे। ऐसे जो अष्टावक्र इत्यादि परम तत्व ज्ञानी हैं, ये लोग और शंकराचार्य भी उसी में, और उनके शिष्य प्रशिष्य जो सन्यासी हैं, जो घर बार छोड़ चुके हैं, बहुत सदाचारी भी हो सकते हैं, ये लोग तत्वज्ञान में परिपूर्ण हो सकते हैं, किंतु उनका लक्ष्य मोक्ष है, ये लोग निवृत्त मार्ग वाले हैं। और दूसरे निवृत्त वाले कौन है? महर्षि देवर्षि नारद जी, बचपन से ही सुखदेव गोस्वामी, सनत सनंदन, सनत कुमार इत्यादि, समझ में आ रहा? ये लोग निवृत्त पारायण है, किंतु परम भगवत भक्त हैं, परमहंस हैं, बचपन से इनकी निवृत्ति प्रवृत्ति में ये चित्त नहीं गया, इसलिए ये लोग निवृत्त मार्गी हैं। संपूर्ण संसार को, यहां तक गृहस्थ धर्म को भी, संसार धर्म को भी सब छोड़ छाड़ करके भगवान एकांतिक रूप में भजन करते हैं, ये लोग निवृत्त परायण में परमहंस इत्यादि कहलाते हैं, ये निवृत्त परायण है। अब थोड़ा सा और देखिए, निवृत्त प्रवृत्त वालों में महाराज हरि अम्बरीश का चरित्र आप लोगों ने सुना है, कैसे थे? भक्ति के लिए उन्होंने दुर्वासा का भी आश्रय नहीं दिया, और वो कुपित होकर के इनको जला डालना चाहा दुर्वासा ने, किंतु भगवान के चक्र ने इनकी रक्षा की और उन्हीं को मारने दौड़ा। ये प्रवृत्त प्राण है, किंतु अंत में इन्होंने भी संसार छोड़ करके निवृत्त होकर के भगवान का भजन में गए। जजाति को जानते होंगे, प्रवृत्त प्राण के रूप में हमने कहा, वो शुक्राचार्य की कन्या, क्या नाम?
देवजानी।
देवजानी, और एक महाराज की लड़की शर्मिष्ठा, विश्वकर्मा, उनकी लड़की, दो लड़कियों से शादी की, इंद्रियों पर काबू नहीं था उनका, कंट्रोल नहीं था, और इस तरह से किसी प्रकार से शुक्राचार्य के अभिसंपात से वो युवावस्था में ही बूढ़े हो गए। फिर शुक्राचार्य के चरणों में गिरे तो उन्होंने कहा, जे तुम अपनी वृद्धावस्था अपना लड़कों को दे करके और उनकी जीवावस्था लेकर के भोग कर सकते हो संसार का। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने पुत्रों में से एक को उन्होंने अपनी जीवावस्था दे दी और बदले में उनकी जीवावस्था लेकर के अपनी वृद्धावस्था दे दी, और हजारों वर्षों तक भोग किया संसार का प्रवृत्ति मार्ग में, और अंत में उनको यह ज्ञान हुआ कि आग में घी देने से आग बुझती नहीं है, ना काम भोगे न काम उपशम्यते, जैसे आग में घी देने से बढ़ती जाती है, वैसे काम से काम की पूर्ति नहीं होती, लोग कहते हैं कि हम भोगों को भोगने के बाद में विरक्त होकर के भजन करेंगे। जैसे एक गाय को छोड़ दो खेत में चर करके पेट भर जाएगा, हट जाएगी, अरे फिर दूसरे दिन आएगी, तीसरे दिन आएगी, जब तक खेत को स्वाह नहीं कर देगी उसका लोभ और बढ़ता जाएगा। इसलिए कामों के द्वारा, लाख पत्नियों के द्वारा या लाख पतियों के द्वारा इस काम का उपशम नहीं हो सकता है, ऐसा समझ करके जयाति जी ने फिर उसको जुआवस्था लौटा करके वृद्धावस्था लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग में आया। पांडवों का आप लोग जानते हैं, पांडवों ने युद्ध किया, सब कुछ किया कृष्ण के आदेश से, और जब राज्य सब मिल गया, कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो इन लोगों ने क्या किया, हिमाचल की तरफ में चले गए, सब राज्यपाट छोड़ करके निवृत्त होकर के भगवान के भजन में लग गए। इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं और भजन भी करना चाहते हैं, 50 वर्ष के ऊर्ध्व में घर छोड़ देना चाहिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग की अंतिम दशा। प्रवृत्ति मार्ग है निवृत्ति मार्ग की उन्नति के लिए, उसको छोड़ करके प्रवृत्ति मार्ग में जाने के लिए। ये हमारे शास्त्रों में मांस खाने की विधि या शराब पीने की विधि, सोमरस पान इत्यादि, या विवाह करने की अनुमति दी गई है, प्रवृत्ति मार्ग में लगने के लिए नहीं। अरे कहां इधर उधर घूमता रहेगा सांड की भांति, एक पत्नी के साथ में रह करके तुम निश्चित पूर्वक में अपने इंद्रियों को संयम करके रहो, ये भी ब्रह्मचर्य है, उनके लिए आदेश का। इसलिए नहीं कि इधर उधर घूमते रहो, इसलिए ये जो दिया गया मांस खाने का भी धान है, यज्ञों में हजारों भाई बंधुओं को बुला करके यदि मांस खाना भी है तो उसमें यज्ञ की विधि से कर करके सबको बांट करके या दे करके तब अपना लो, यदि मांस खाने की इच्छा, जब तब जैसे तैसे इंद्रियों को चैतात करने के लिए मांस खाओ, ऐसे करते एक दिन समझेगा और उसको भी छोड़ देगा। इसी तरह से सूरा, ये किस लिए, बहुत मद्यपान करता है, अच्छा नियमित करो, इसके बाद में छोड़ देना। विशेष करके हमारे यहां सुरा यज्ञों में घ्राण किया जाता था, भोज उसको पिया नहीं जाता था, पशुओं का आलम्बन किया जाता था, उनकी हत्या नहीं की जाती थी। आलम्बन मैंने क्या, उत्सर्ग कर देना बस, मारना नहीं। इसी तरह से विवाह और धान्यनी के रूप में ग्रहण किया जाता था धर्म के लिए, एक बेटे के उत्पन्न करने के लिए, संसार चक्र की रक्षा करने के लिए, भोग के लिए नहीं। इसलिए यह प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग से एक दिन निवृत्ति में आने से ही हमारा कल्याण है, अन्य तो कोटि जन्मों तक प्रवृत्ति मार्ग में रहेंगे भी कल्याण नहीं होने का। रामचंद्र जी अयोध्या से लौट रहे हैं, लौट आए और सबको जब विदा दे रहे हैं तो सुग्रीव जी आकर के उनके चरणों में गिरे और हाथ जोड़ करके बोले, मुझे याद नहीं है इसलिए थोड़ा सा लिख लिया। सुख संपत्ति परवार परिवार बढ़ाई, ये सब भाई सब परिहार करूं सेवकाई। प्रवृत्ति मार्ग में है किंतु भजन भी उनका है, भजन प्रधान है, तो भी करें सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरे करूं सेवकाई, ये सब राम भक्ति के बाधक कहीं संत तो पद अवराधक। संत और पुराण शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तक भजन करो दिन रात, ये निवृत्ति मार्ग है। संसार में आदमी जितना भी करे किंतु संपूर्ण उसे अपनी एनर्जी नहीं दे सकता, इसलिए हनुमान जी ने शादी नहीं की। हनुमान को दिन रात क्या करना है, भगवान का सेवा करना है। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का यह विषय है। एक प्रश्न और छोटा सा आया, मैं तो कुछ कृष्ण की मधुर लीलाओं की तरफ मैं जाना चाहता था, तो भी थोड़ा सा एक इसका हिंट दे रहा हूं। मार्ग ज्यादा मार्ग किसको कहते हैं और लीला पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि जब कृष्ण वही कुछ मर्यादाओं के साथ में, लौकिक मर्यादाओं के साथ में बध जाते हैं तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उन पर कोई भी अंकुश और वेद की आज्ञा कुछ नहीं है, उनकी वाणी उनका आचार ही सब सदाचार और वेद की प्रतिष्ठा है, उनके अंदर नहीं है। तो भी जगत में जगत के कल्याण करने के लिए कुछ मर्यादाओं को लेकर के आते हैं। माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के प्रति हमारी कैसी मर्यादाएं होनी चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सबका मर्यादा लेकर के आए हैं। उस मर्यादा के विपरीत काम नहीं करेंगे वो, इसलिए रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। सब मर्यादाएं उनको ठीक एकदम भली बात ही ठीक रहते हैं, जैसे जगत के लोग इन मर्यादाओं का पालन करके अपना जीवन में सुखी रहे, यह है तो मर्यादा का। और प्रेम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम वह है जो इन मर्यादाओं की कोई भी परवाह नहीं करते। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, तेही अधीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति के ये दास दासी हैं ज्ञान और वैराग्य। ये श्रीमद्भागवत के महात्म में इसका वर्णन किया गया है, ये कैसे इनके बेटे हैं। ज्ञान से कुछ अधिक लाभ नहीं होगा, आप जान सकते हैं पानी पीने से प्यास बुझती है, ये ज्ञान आपको प्यास नहीं बुझाएगा, किंतु यदि आप पानी पी लेंगे तो प्यास बुझेगी। भक्ति यही चीज है क्रियात्मक रूप में। दूसरी बात तुलसीदास जी ने यह भी कहा, ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्रीलिंग है, माया भी स्त्री है, इसलिए ज्ञान उससे मोहित हो जाएगा, किंतु भक्ति को ये माया मोहित नहीं कर सकती। इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान लोग मुक्ति को या ज्ञान को परिहार करके दूर करके भक्ति का आदर करते हैं। लीला पुरुषोत्तम उसको कहते हैं जहां पर ये मर्यादाएं प्रेम में बाधक न हो, जैसे हनुमान जी राम के साथ में मर्यादा पालन करते हैं, उनको देखते ही प्रणाम करेंगे, दूसरे साष्टांग प्रणाम करेंगे, उनके चरणों को धोएंगे पखारेंगे, उनकी सब प्रकार से सेवा करेंगे। वो आकर के राम जहां बैठे हैं तुरंत आकर के बैठ करके उनका आलिंगन नहीं कर लेंगे, अपनी जूठी चीजों को नहीं दे सकते, उनके पलंग पर या उनके खड़ाओं को नहीं पहन सकते, उनका कोई भी चीज व्यवहार नहीं कर सकते। उसको जैसे भरत जी रामचंद्र जी के पादुका को सिर पर धारण करते हैं, पहन लेंगे नहीं पहन सकते, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। और उनके भक्त भी ऐसे मर्यादा का पालन कर, कृष्ण अर्जुन राम ने सखा बनाया सुग्रीव को और विभीषण को, अग्नि की साक्षी दे करके सखा बनाया। सखा किसको कहते हैं? समान भाव आले को सखा कहते हैं। सुग्रीव जी राम के सिंहासन पर बैठ सकते हैं, उनको गले में गलबहिया डाल करके प्यारे सखा कर सकते, जूठा खिला सकते नहीं कर सकते। और ब्रज के सखा धत तेरी भी कहेंगे, सारे भी कर देंगे और उनके पलंग पर सोएंगे, अभी तक सो रहा है कन्हैया, और झट उसको मर्दन करेंगे, गले पर चढ़ा देंगे ऐसे, अभी तक सो रहा है, और पकड़ करके उठा देंगे, अच्छी स्वादिष्ट चीज रहेगी तो खाते हुए खा लेंगे और उसके मुख से भी निकाल लेंगे और खा लेंगे। हनुमान कर सकते हैं, भरत जी या लखन लाल भी कर सकते हैं, सीता जी भी नहीं कर सकती। राम में सब दिशा में और उनके भक्त में मर्यादा रहेगी। और कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, उनके भक्त भी ऐसे ही हैं। कृष्ण से एक बार श्री राम जी का की लड़ाई हो रही, लड़ाई माने क्या कहते हैं, दंगल कुछ हो रहा है, कुश्ती हो रही है ने? और श्री राम जी ने कृष्ण को चित कर दिया, पछाड़ दिया, तो कृष्ण भी मुस्कुराने लगे और ये भी मुस्कुराने लगे। तो उन्होंने पूछा श्री राम जी ने, तू किस लिए हंस रहा, मैंने तो तुमको चित कर दिया, तुम हार गया तो फिर किस लिए हंस रहा, मैं हारा नहीं तू हारा और मैंने जीत लिया। तो कैसे भाई, देखो सज्जनों की और बड़े आदमियों की नाक ऊंची रहती है वो बड़ा है, हमारी नाक देखो ऊपर में है, तेरी नाक नीचे की, तू हार गया मेरी जीत हो गई। ये सखा लोग हैं ने? ये सखाओं का कर सकता है राम का कोई परिकर नहीं कर सकता, ऐसा किसी में संभव नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। भरत भी नहीं, भरतलाल भी नहीं कहेंगे, श्रीमती सीता जी उनकी प्यारी पत्नी हैं, किंतु उनको वनवास दे सकते हैं और राधा जी को वनवास कृष्ण देंगे, बल्कि राधा जी कहेंगे हमारे कुंज में प्रवेश न करना काले, भीतर बाहर के काले, लंपट चोर, दस का बातें सुना देंगी, कौशल्या जी कभी राम का कान ऐंठ सकती हैं और यशोदा मैया कहना आज तक ये तो बात ही बात रहे, कमर में ओखल भी रस्सी से बांध देगी और कृष्ण करके रोएंगे। राम ऐसा मर्यादा नहीं, प्रेम में मर्यादा ऐसी नहीं होती है, वो फुटबॉल की तरफ में कहां उड़ा देते हैं मर्यादा को, यह है लीला पुरुषोत्तम। गोपियों के रास में कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि प्यारी थक गई, नुपुर यही टूट करके गिर पड़ा, उसको लेकर के बांध देते हैं, अपने पीताम्बर से उनके मुखार बिंद पहुंचते हैं और कहते हैं कि गोपियों मैं तेरे ऋण का कभी भी ऋण से मोचन नहीं हो सकते, ऋण नहीं हो सकते, न पारे हम निरवध्य संजुजा ससाद कृत्यादि विशाल साप मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्य तदव प्रतिजात साधुना। हे गोपियों तुम्हारे ऋण समय कभी ऋण नहीं हो सकता। गोपियों ने हंस करके कहा अरे ऋण तुमने तो ऐसी प्रतिज्ञा की है जो जैसा भजन करता है उसका ऋण मैं दूर कर देता हूं, और आप तो कहते हैं कि मैं भगवान हूं सब समर्थ हूं तो क्यों नहीं कर सकते, कर दो, बात क्या है। बात यह है मैंने विचार करके देखा, यदि तुमसे कहूं जो कुछ मांग लो तो तुम यही मांगे तेरी सेवा, मेरी सेवा जहां और मैंने दिया तो और भी मैं ऋणी बन गया। दूसरी बात तुम लोगों का प्रेम हमारे प्रति अखंड है, अखंड समझते हैं ना, अखंड प्रेम, किंतु मेरा प्रेम तुम लोगों के प्रति अखंड नहीं है ना? जैसे गोपियों ने तुम लोगों ने हमारे लिए अपने पति का प्रत्याग किया, घर गृहस्थी सब कुछ, यहां तक कि स्त्रियों के लिए लोक लज्जा छोड़ना बड़ा भारी कठिन है, नंगा होना कठिन है, लोक लाज छोड़ देना बड़ा भारी कठिन है, किंतु गोपियों ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। एक पत्नी है रुक्मिणी जी हैं या सीता जी ना, रुक्मिणी को 10 पुत्र और 1 कन्या है, इसलिए कृष्ण का प्रेम जो है गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति अखंड है, उसके लिए सब कुछ छोड़ दे सकती है। भक्ति की यही परिभाषा है। कोई भी अपने लिए वो देखते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मेरा पति तो है, किंतु पहले पुत्र को खिला लूं पिला लूं तब पर पति से बात करूंगी। गोपियां का कोई पुत्र है? कोई पुत्र नहीं। उसको कृष्ण में रास में नहीं लेते, सभी कृष्ण को स्नेह करती हैं, किंतु वो कुमारियां हैं, ब्रज कुमारियां हैं। वो विवाह हुआ है यद्यपि उनका पति से संबंध नहीं, और वो भी बहुत गूढ़ रहस्य सब है। ये बतलाने में तो फिर आज का पूरा समय ही चला जाएगा, इसलिए आज के उस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करता हूं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम की अपेक्षा वही राम अपने कृष्ण के लीला पुरुषोत्तम में बहुत बहुत ऊपर प्रेम की पराकाष्ठा है, इसको समझिए। और भक्ति की तुलना में ज्ञानी पाषण भी नहीं ठहरेगा। पाषण समझते हैं, तराजू होती है उसमें दो नीचे पल्ले होते हैं, तो जब उठाते हैं तो देखते हैं कि बराबर है कि नहीं, तो थोड़ा सा कमी बेस होता है, तो उसमें कुछ पत्थर या एक आलू या कुछ भी उसको दे देते हैं, पल्ले को पहले बराबर कर लेते हैं, उसको पाषण कहते हैं। तो ये ज्ञान भक्ति के पाषण में भी नहीं ठहरता, इतना ऊंचा है भक्ति। भक्ति होने से अपने आप ज्ञान वैराग्य होंगे, किंतु ज्ञान वैराग्य होने से भक्ति होगी नहीं होगी कोई भी गारंटी नहीं है। वो बल्कि असत पथ पर ले जाएगा, निर्विशेष और मुक्ति तरफ में ले जाएगा। इसलिए भक्ति बहुत ऊंची है, उसमें प्रेमा भक्ति और ब्रज भक्ति की तो बात ही क्या। इस ब्रज भक्ति की कुछ छींटे देने आया था, किंतु मैं इच्छा करने पर भी नहीं दे सका, मैं इधर उधर की बातों में ही रह गया। इसलिए भगवान यदि करेंगे, आप लोग यदि फिर मुझे बुलाएंगे तो मैं फिर दौड़ाऊंगा। और ब्रज भक्ति की कुछ छींटे देने की चेष्टा करूंगा। अभी खूब संक्षेप में प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं का शुभानंद ब्रह्मचारी जी 15-20 मिनट में मैं कुछ बोलेंगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं। इसके बाद में ब्रज की एक छोटी सी बात में कृष्ण की लीलाओं में से एक छोटी सी कथा, लघु कथा में परिवेशन करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। बोलिए, खूब संख्या के तो बोलिए। अब मैं थोड़ा सा, अब 15 मिनट समय है, अब 15 मिनट के समय में आपको कुछ थोड़ी सी ब्रज का लीला का को थोड़ा सा चस्का देना चाहता। कृष्ण जी पैदा हुए यशोदा मैया के गर्भ से। यूं तो मथुरा में कहा जाता है जो उनका जन्म हुआ कंस कारागार में, किंतु वहां पर कुछ अंशों में ही हुआ, असल में जन्म हुआ यशोदा जी के गर्भ से गोकुल में। यहीं पर पले, यहीं पर पोसे गए, यहीं पर कुछ बड़े हुए। जब 2.5-3 वर्ष के हुए, अद्भुत सुंदर मैया यहां पर मोर मुकुट पहना देती, छोटे बचपन से ही बंसी रखते और सारे लोगों को आकर्षण करते, इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ। जब थोड़े से और बड़े हो गए, चलने फिरने लगे, अपने लंगोटिया यारों के सहित, दाम सिदाम सुदाम मधुमंगल इत्यादि के सहित में ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करने लगे। पास पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराते, गोपियां कभी पकड़ लेती तो मुस्कुरा देते, कहते कि मैया हमने समझा कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, तू मेरी मैया नहीं है, बस मुस्कुरा देते, हाथ छुड़ा करके भाग जाते। कभी किसी के घर में पहुंच जाते मक्खन में कि हड़िया में हाथ लगाया, इतने में गोपी ने पीछे से पकड़ लिया, अरे तू अभी से चोरी सीखने लगा, मैया मैं चोरी कहा कर रहा, तो क्या कर रहा, अरे हमारा बछड़ा इसमें कूद गया था, इसको मैं ढूंढ रहा था, इसलिए मैं, अरे तेरा बछड़ा इसमें कैसे कूद गया, तो उसमें हाथ लगाया और एक मार्बल पत्थर का बछड़ा जो बाबा ने खेलने के लिए दिया था उसमें, अरे ये देखो तो, और हंसने लगे, बस हाथ छोड़ा करके चले। किसी गोपी ने वो यही चाहती थी कि कृष्ण हमारे घर में आए, नंगा धड़ंगा छोटा सा बच्चा, सभी चाहते थे कि हमारे घर में आए, मक्खन दें, हम खुद ही दें, किंतु क्या हमारे घर में मक्खन नहीं, हमारे घर में मैया हमारे लिए मक्खन नहीं रखती, ये तेरे घर से खाऊं, किंतु उनको चोरी करना ही अच्छा लगता है। माने मक्खन चोरी क्या करना है, लोगों का दिल चोरी करना है। बड़ी बड़ी जन्मों में तपस्या की थी, इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान होकर के, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड होकर के, और उनके घरों में मक्खन नहीं प्रेम की चोरी करते हैं, उनके हृदय को चोरी करके रख लेते हैं। इसलिए जिसके घरों में जाते हैं वो फिर जीवन में उनको नहीं भूलती, उनका हृदय चोरी कर करके चले जाते हैं। किसी समय एक गोपी ने उनको पकड़ लिया, तो क्या कर रहा है तू हमारे घर में चोरी करने के लिए आई इतने सदरे अंधकार में, पकड़ आज मैं यशोदा जी को सखी को ले जाऊंगा तुमको, और वहीं पर कहूंगी तुम कहती है ये विश्वास नहीं करती ये कभी चोरी करता है, आज मैं खुद पकड़ करके ले जाती हूँ। ये कह करके गोदी में उठा लिया और अपने अंचल से ढक दिया। अरे सखी यशोदे 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 सुन, देख तो तू मेरी बात नहीं मानती, देखो तेरा लाला ये क्या कर रहा है, उसको आज पकड़ करके ले आई हूँ, उसके मुख में और हाथ में अभी मक्खन लगा हुआ है देखो। यशोदा जी दौड़ती हैं, अरे हमारा लाला तो सो रहा है, ये किसको ले आई, उठा करके अंचल देखा जो गोपी लाई थी उसी का बेटा। इतने में कृष्ण करके उठे, मैया रोज इसी तरह से झूठ बोलती हैं, अब मैं आज से जरूर नहीं के घरों में चोरी करने के लिए जाएंगा। ऐसी ऐसी ये लीलाएं करते हैं, सारे ब्रज के लोग कृष्ण को चाहते हैं, हमारे घर में आए, उसको दूध पिलाएं, उसको स्नेह करें, ये बचपन से। राम की लीलाएं बड़ी सुंदर है, काकभूषुंडी इत्यादि का आप लोग तो पढ़े हैं ना, कृष्ण की लीलाएं इतनी मनोहर और हैं जो आप लोग जब देखेंगे तो सुनेंगे। तो एक दिन यशोदा जी ने सोचा ये मेरा लाला इतना ढीठ हो गया सचमुच में, क्यों हो गया, सोचा जी हमारे घर का मक्खन ज्यादा खट्टा होता है, दाइयां दासियां ये दधि मंथन करती हैं, दधि बनाती हैं, और इसलिए खट्टा होता है, इसलिए ये खाता नहीं है, और दूसरों के घरों में बड़े अपने आप वो सजो दे करके और उसका दही बनाती हैं, बड़ी मीठी लाल लाल होती है, ब्रज की मीठी दही दही देखेंगे भूल जाएंगे सब, हाथ डालेंगे सब घी से तर बर हो जाएगा, साबन देना पड़ेगा, इतना मीठा अधिक मक्खन जो क्या कहें। आज मैं खुद अपनी पद्म गंधा गायों को दूंगी और अपने आप उसे जमाऊंगी, अपने हाथों से मंथन करके देखूं तो कैसे नहीं खाता है, फिर घरों में करने के लिए कैसे जाता है। दिन था दीपावली का, उन्होंने सखियों को कहा जैसे कि अपने अपने घरों में जाओ दीपावली का त्योहार मनाओ, आज मैं खुद ही ये सब कर करके और सवेरे में दधि मंथन कर लूंगा और तुम इसके बाद में तुम लोग आ जाना। सब सखियां चली गई, रोणी मैया भी बलदेव को लेकर के उपानंद जो नंद के बड़े बाबा भैया हैं उनके घर में चली गई। अब यशोदा जी अकेले रह गई, कोई भी दास दासी कोई ब्रजवासी नहीं। सवेरे उठी भोर में दूसरे दिन अपने हाथों से दही जमाया, बहुत सुंदर दही, और एक खंभे में वो रस्सी को लपेट दिया और मंथनी में उसे लगाया और घर घर इस तरह से करती हैं। अरे पचासों या एक मन दो समन दो मन दस मन हो तो यह ऐसे मंथनी से नहीं होगा। जो सुधा जी का भी मंथनी नंदगांव में रखा गया है देखने के लिए, उसमें 10-20 मन आ सकता है, और दधि की मंथनी, और जो सुधा मैया कितनी अपूर्व सुंदरी होंगी इसी से समझ लें कि इनका इतना लाला सुंदर है, जगत को आकर्षण करता है, यहाँ तक पशु पक्षी मृग यहाँ तक कि हिरण तक भी मुग्ध हो जाते हैं। तो यशोदा जी कैसी होंगी सुंदर, बहुत सुंदर, बस्तक छल चौड़ा, कमर पतली, जरा झुकी तो जरा टूट न जाए, और रेशमी वस्त्र ऐसे पहनी है मानो भीतर से सौंदर्य वो झांक रहा हो, और तन्मय होकर के कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए और वो गायन करती हुई और तन्मय होकर के दधि मंथन कर रही है। कृष्ण को पल्ले में सुला दिया है जरा दूर, जो घर घर से आवाज से उठ न जाए, और जरा दूर रह करके ये घर घर
उसको मंथन कर रही हैं।
क्या कर रही हैं? ऐसा करती हुई हाथ की चूड़ी मानो करताल है, मीठी मीठी जोड़ी होती है ना, जोड़ी है। और घर घर जो शब्द दधि मंथन से उठ रहा है वो मृदंग का शब्द मानो धिक्तान धिक्तान धिक्तान। उन लोगों को धिक्कार है जो कृष्ण ऐसे कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, उनको धिक्कार है, मानो ये धिक्तान। और गा रही हैं, क्या गा रही हैं? गोविंद दामो धर्माधरेती, गोविंद दामो धर्माधरे, गोविंद दामो धर्माधरेती, गोविंद दामो। ओ दुखले संग घंट तंदुलांश्च संघंटयन्तो मुसलई प्रमुग्धा, गायन्ति गोप्या जनितानुरागा, गोविंद दामो गोविंद दामो। इस भाग में कृष्ण की बाल चरित्राओं का गान करती हुई दधि मंथन करती हुई कभी सुकों को, सुक पक्षियों को गोपियां अपने पिंजरे से गा करके कह रही हैं, सुना रही हैं, उनको सिखा रही हैं। गोविंद दामो धर्माधरेती, गोविंद दामो। कोई गोपी मुखल से खुट रही है, शायद आप लोगों को कुटने का अभ्यास नहीं हो, मुसल उठाई नहीं सकती 5-10 किलो का, वो तो हमारे पंजा जी के यहाँ से खूब छटा हुआ चावल आ जाता है, आटा आ जाता है, ब्रेड भी बन करके खरीद करके ले लेते हैं, काम सुसर से फुर्सत नहीं, सब समय ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि काम ही नहीं होता तो ब्लड प्रेशर नहीं आगा तो क्या होगा। और उस समय की स्त्रियां 10-10 किलो के मुसल से कूट रही हैं। गोविंद दामो धर्माधरेती, गोपियां झाड़ू बहारू अपने घरों में दे रही हैं, और चित्त कहाँ है? गोविंद दामो धर्माधरेती, की आंखें छल छल आई हैं, अश्रु बुंद जानो मोतियों के बिंदु पड़ रहे हैं, और परिश्रम से पसीने मस्तक पर भाल पर उनके मोतियों की भांति गिर रहे हैं दो एक। और यहां पर फूल उनकी बेणी में गुथी हुई है, फूल बेली चमेली मोती के, वो भी धीरे 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 बेली भी शिथिल हो गई, गिर गई, और यहां से अंचल हट गया और तन में होकर के गा रही। इधर में लाला उठा, मैया मैया को ऐसा देख रहा, मैया ने लंबी लंबी काजल की रेखाएं लगा रखी हैं, ऊ करता हुआ आंखें ऐसे न मिज करके ऐसे मिज रहा है, कभी ऐसे मिज रहा, और अश्रु मिश्रित काजल भी चारों तरफ में, एक तो ऐसे ही करेला चीता और चढ़ा नीम पर, ऐसे ही श्यामले और उधर से और काला, ऊ करते किसी प्रकार से देखा जी मैया तो है नहीं, कहाँ गई? देखा दूर से मैया तो दधि मंथन कर रही है, वहां से किसी प्रकार से पेट के बल में बड़ी कष्ट से उतरे, और जो पृथ्वी का धारण करने में, गोवर्धन को उठाने में तनिक भी परिश्रम नहीं हुआ, बराह रूप में सारी पृथ्वी को उठा लिया, ऐसे मालूम हाथी के दांत पर जैसे कमल का एक पुष्प रखा गया, हिरण्यकश्यप रावण इत्यादि को मारने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ। आज ये पलंग से उतर नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल से उतर करके, और बच्चों का अस्त्र है रोना, बड़े जोर से रोना आरंभ कर दिया। मैया सुन एकदम तो तन्मय है, वो सुन नहीं रही, निकट में और जितने जितने बढ़ रहे हैं और उतने ही रोने की ध्वनि और बढ़ती जाती है। आंसू तो पहले तो नहीं थे, किंतु अब धीरे धीरे मैया हमारा हमें दूध पिलाने नहीं आ रही, इसलिए धीरे धीरे रोना में भी आ गया। धीरे धीरे गंगा और जमुना उनके यहाँ मस्तक तल से प्रवाहित होने लगी और रोने रोते रोते किसी प्रकार से मैया के निकट में पहुंचे और दधी दंड को मथनी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से मैया के सिर पर अंचल जो था उसको पकड़ा। लेकिन देखा क्या हो गया, तन्मय होकर के करे से झट उन्हें देखा, अरे ये तो मेरा लाला रोता हुआ बट बड़े प्यार के साथ में अपनी गोदी में बैठा लिया और अंचल से ढक करके अपना स्तन दिया। इतना दूध क्षीर समुद्र उसके एक बिंदु से ही भर जाए और कृष्ण का पेट जैसे असंख्य लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड उनके पेट में समा जाए, गणेश जी भी कोटि कोटि गणेश जी जो हैं जो इतने पेट वाले वो भी उसमें समा जाए। तो अभी पी रहे हैं, कितना पिएंगे कब तक, भूख इतनी बड़ी ललक के साथ में पी रहे हैं, जसोदा का युद्ध कभी भी अनंत युगों में भी कम नहीं होगा।